नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा, भारत अप्रतिबंधित स्रोतों से सबसे सस्ता और उच्चतम गुणवत्ता का कच्चा तेल आयात करेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए कल मतदान। अल्पसंख्यक नेताओं और इस्लामिक विद्वानों का बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को समर्थन। नेपाल में बागमती प्रांत के रामेछाप के मंथाली इलाके में बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष आज श्रीलंका से भारत लाए जा रहे हैं। और आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने अमरीका को 32 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि भारत उन देशों से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा जहां ये सस्ता और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। भारतीय तेल कंपनियां भू राजनीतिक स्थिति और प्रतिबंधित न किए गए स्रोतों को ध्यान में रखते हुए तेल की खरीद करेंगी। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कल कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति को ये जानकारी दी। श्री थरूर ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में 30 सदस्यों में से 28 सदस्य उपस्थित रहे। श्री थरूर ने कहा कि बैठक का अधिकांश समय भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रित रहा और रूसी तेल और कृषि उत्पादों सहित सभी विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने समिति को बताया कि भारत अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते को आखिरी रूप देने पर काम करेगा और लोगों को इसके विस्तृत विवरण के लिए इंतजार करना चाहिए। श्री थरूर ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें सबसे कम दर मिली है। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षता सिंह।
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर ने भारत को अमेरिका की कंपनियों के लिए चीन से बेहतर और एक व्यवहार्य विकल्प बताया है। श्री ग्रीर ने कहा कि इस समझौते का प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक अशोक कुमार सिंह ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भारतीय किसानों के हित में बताया है।
जो हम भारत से निर्यात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका में हमारा बासमती चावल जाता है, श्रिम्प यानी कि झींगा मछली जाती है, और पहले जो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाने की बात की गई थी, इस अनुबंध के तहत इसको घटा करके 18% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये समझौता सब मिला करके भारतीय किसानों उपभोक्ताओं के हित में है, ये मेरा मानना है।
इस बीच आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ AMAM के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप मुल्तानी ने कहा है कि औषधि उत्पाद विशेष रूप से जेनेरिक दवाएं प्रतिकूल टैरिफ उपायों से सुरक्षित रहेंगी जिससे अमेरिका को निर्यात की निरंतरता सुनिश्चित होगी।
जब दुनिया भर में सस्ती और भरोसेमंद दवाइयों की जरूरत बढ़ रही है, इस समझौते से भारतीय फार्मा कंपनियों को भरोसा मिला है क्योंकि जेनेरिक दवाइयों पर अतिरिक्त टैरिफ का खतरा फिलहाल नहीं है, जिससे अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है उस पर हमारी सप्लाई लगातार जारी रह सकेगी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होराइजन 2047 रोडमैप पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ा रुख अपनाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट ने कहा है कि चर्चा ऊर्जा और विनियमन में ढील पर केंद्रित होगी। ट्रंप के सत्ता में लौटने के 1 साल बाद अमेरिका में ये उनकी छठी मुलाकात होगी। अक्टूबर में यरूशलम में भी उनकी मुलाकात हुई थी जब ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम की घोषणा की थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @ AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा के टम्बलर रिज में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत की खबर है। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार हमलावर ने खुद को गोली मार ली। स्कूल के अंदर 6 लोगों के शव मिले हैं। मामले की जांच जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ब्रिक्स 2026 के शेरपाओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने पर यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परामर्श और समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है और अपने जन केंद्रित एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है जो एक दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं। बांग्लादेश में 13वीं जातीय संसद के चुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले चुनावी माहौल और हिंसा की आशंकाओं को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ढाका से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
जैसे जैसे बांग्लादेश 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान की तैयारी कर रहा है, अल्पसंख्यक नेताओं और इस्लामी विद्वानों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रति समर्थन का संकेत दिया है। यह समर्थन ऐसे समय में सामने आया है जब हिंसा और चुनावी माहौल को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस बीच कई इस्लामी समूहों के नेताओं ने मतदाताओं से बीएनपी के चुनाव चिन्ह धान की बालिया के पक्ष में वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि बीएनपी एक सुरक्षित और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करती है। मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक होगा। हालांकि प्रतिद्वंदी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों और मतदाता डराने के आरोपों ने चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की मध्य तिराना में पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर उप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने बताया कि 16 प्रदर्शनकारियों को जलने और अन्य चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 13 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के हवाई अड्डे पर एक यात्री विमान तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र तट पर जा गिरा। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि विमान से यात्रियों को निकालने के लिए अभियान जारी है। प्रशांत महासागर में आज रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप 515 किलोमीटर की गहराई पर था। म्यांमार और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष कोलंबो के पूजनीय गंगा रामाया मंदिर में एक सप्ताह तक चले सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद आज भारत लाए जा रहे हैं। ये पवित्र अवशेष मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं और अधिकारियों द्वारा वापस लाए जाएंगे। नेपाल में कल बागमती प्रांत के रामेछाप के मंथाली के पास एक बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। बस काठमांडू से ओखलढुंगा जाते समय तमाकोशी नदी में गिर गई। आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हरा दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा भारत अप्रतिबंधित स्रोतों से सबसे सस्ता और सर्वोत्तम गुणवत्ता का कच्चा तेल आयात करेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में बैठक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए कल मतदान। अल्पसंख्यक नेताओं और इस्लामी विद्वानों का बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को समर्थन। नेपाल में बागमती प्रांत के रामेछाप के मंथाली इलाके में बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत और भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष आज श्रीलंका से भारत लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।